इलाइजा नंबर दो भविष्य सूचक विशेषताएं।
पिछले लेख में हमने एलिया को एक प्रतीक के रूप में पहचाना था। विलियम मिलर के नियमों के अनुरूप प्रतीकों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए प्रतीक के रूप में एलिया एलिया और मूसा के दोहरे प्रतीक के एक भाग का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। एलिया और मूसा का ये दोहरा प्रतीक प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक में व्याप्त है, और इस दोहरे प्रतीक का क्या अर्थ है इस पर अनिश्चित होना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उस संदेश के बारे में भी अनिश्चित होना है जिसकी मुहर अनुग्रह काल समाप्त होने से ठीक पहले खोली जाती है। इसी कारण अब हम विशेष रूप से उन कुछ भविष्य सूचक विशेषताओं पर विचार करेंगे जो एलिया के प्रतीक से संबद्ध है। हमारे पास उन भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं को स्थापित करने के लिए तीन प्रमुख साक्षी हैं। वे साक्षी हैं भविष्यवक्ता एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और विलियम मिलर, जिन्हें प्रेरणा परस्पर विनिमेय प्रतीकों के रूप में पहचानती है।
हजारों लोग विलियम मिलर द्वारा प्रचारित सत्य को अंगीकार करने के लिए प्रेरित किए गए और संदेश का प्रचार करने हेतु एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में परमेश्वर के सेवक उठाए गए। यीशु के अग्रदूत यूहन्ना की तरह इस गंभीर संदेश का प्रचार करने वालों ने अपने आप को विवश पाया कि वे वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा रखें और मनुष्यों को पुकारें कि वे पश्चाताप के योग्य फल उत्पन्न करें। उनकी गवाही ऐसी थी कि कलीसियाएं जागृत हों, बलपूर्वक प्रभावित हों और उनका वास्तविक चरित्र प्रकट हो, और जब आने वाले क्रोध से भागने की गंभीर चेतावनी सुनाई गई तो कलीसियाओं से जुड़े बहुतों ने उस आरोग्यदायक संदेश को स्वीकार किया। उन्होंने अपने पश्चगमन को देखा और पश्चाताप के कड़वे आंसुओं तथा आत्मा की गहरी वेदना के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, और जब परमेश्वर का आत्मा उन पर ठहरा तब उन्होंने इस पुकार को बुलंद करने में सहायता की, परमेश्वर से डरो और उसको महिमा दो क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। प्रारंभिक लेखन 33:8।
एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और मिलर को एक विशिष्ट आत्मा दी गई थी जिसने उनके कार्य का मार्गदर्शन किया और उसे परिभाषित किया। उनकी गवाही इस प्रकार तैयार की गई थी कि वो कलीसियाओं को जागृत करे, उन पर शक्तिशाली प्रभाव डाले और उन कलीसियाओं के वास्तविक चरित्र को प्रकट करे, चाहे वो अहाब का समय हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का या विलियम मिलर का। जिन कलीसियाओं को वे संबोधित कर रहे थे वे सभी लौदीकिया सी अंधता से ग्रस्त थीं, जो इतनी गहरी और घनी थी कि संदेश को पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी रखने जितना सीधा होना आवश्यक था। इसमें अनुग्रह काल के समापन की घोषणा शामिल थी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ आने वाले क्रोध की चेतावनी थी। मिलर का ये संदेश परमेश्वर का भय मानो और उसे महिमा दो क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है भी आने वाले क्रोध की चेतावनी था।
यूहन्ना की वाणी ना रसिंगे की तरह ऊंची उठी। उसका आदेश था, मेरे लोगों को उनके अपराध और याकूब के घराने को उनके पाप पता। यशाया 58:1। उसने मनुष्यों से कोई औपचारिक शिक्षा नहीं पाई थी, परमेश्वर और प्रकृति ही उसके शिक्षक रहे थे, पर मसीहे के आगे मार्ग तैयार करने के लिए ऐसे एक की आवश्यकता थी जो इतना साहसी हो कि उसकी वाणी प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं की तरह सुनाई दे और जो पतनशील राष्ट्र को पश्चाताप के लिए बुलाए। चुने हुए संदेश पुस्तक 2:148।
एलिया ने आदेश दिया कि उनकी पीढ़ी उस दिन ये चुन ले कि वे परमेश्वर की सेवा करेंगे या बाल की, और उस पीढ़ी ने एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया जो बाल को चुनने के बराबर है।
विश्वास योग्य चेतावनियों और ताड़नाओं की और सच्चाई व सीधेपन से काम लेने की इस समय से बढ़कर कभी आवश्यकता नहीं रही। शैतान ये जानकर कि उसका समय थोड़ा है बड़े सामर्थ्य के साथ उतर आया है। वो मनभावनी गढ़ंत कथाओं से संसार को भर रहा है, और परमेश्वर की प्रजा को ये प्रिय है कि उनसे चिकनी चुपड़ी बातें कही जाएं। पाप और अधर्म से घृणा नहीं की जाती। मुझे दिखाया गया कि परमेश्वर की प्रजा को आती हुई अंधकार को पीछे धकेलने के लिए और अधिक दृढ़ निश्चयी प्रयास करने चाहिए। परमेश्वर का आत्मा का गहन और निकट कार्य अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। मूर्खता को झटक देना होगा, हमें उस सुस्ती से जागना होगा जो यदि हम उसका विरोध न करें तो हमारे विनाश का कारण सिद्ध होगी। शैतान का मनो पर शक्तिशाली नियंत्रक प्रभाव है। उपदेशक और लोग अंधकार की शक्तियों के पक्ष में पाए जाने के खतरे में हैं। अब तटस्थता जैसी कोई स्थिति नहीं रही। हम सब या तो स्पष्ट रूप से सही के पक्ष में हैं या स्पष्ट रूप से गलत के साथ। मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो तितर-बितर करता है। गवाहियां खंड 3:323।
जॉन ने अपने इतिहास के पतनशील राष्ट्र को जहरीले सांपों की पीढ़ी कहा। आखिरकार मिलराइटों ने अपने इतिहास के उस पतनशील राष्ट्र की पहचान बाबुल की पुत्रियां के रूप में की। चाहे एलियाहू, जॉन हो या मिलर, तीनों में से कोई भी धर्मशास्त्री नहीं था। वे सभी साधारण जीवन से ही बुलाए गए थे।
यीशु में जो सत्य है, जैसा कि उन्होंने तब घोषित किया था जब उन्हें मुलायम बादल ने घेर रखा था, वो आज हमारे इस युग में भी यथार्थ और सत्य है। और जैसे उसने अतीत में मनों को नया किया है, वैसे ही ये ग्रहण करने वाले के मन को भी उतनी ही निश्चितता से नवीनीकृत करेगा। मसीह ने घोषित किया है, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से जी उठे, तब भी वे नहीं मानेंगे। लूका 16:3।
एक समुदाय के रूप में हमें पवित्र आत्मा के सर्वोच्च मार्गदर्शन के अधीन सुसमाचार के शुद्ध रूप में प्रसार के लिए प्रभु का मार्ग तैयार करना है। जीवित जल की धारा अपने प्रवाह में और गहरी और विस्तृत होती जाएगी। सभी क्षेत्रों में पास पड़ोस से लेकर दूर दराज तक लोगों को हल से और उन सामान्य वाणिज्यिक व्यवसायों से जो मन को अधिकतर व्यस्त रखते हैं बुलाया जाएगा, और वे अनुभवी सत्य को समझने वाले लोगों के साथ मिलकर शिक्षित होंगे। परमेश्वर के अत्यंत अद्भुत कार्यों के द्वारा कठिनाइयों के पर्वत हटाए जाएंगे और समुद्र में डाल दिए जाएंगे। आइए हम वैसे ही परिश्रम करें जैसे वे जिन्होंने यीशु में जैसा सत्य है उसके सामर्थ्य का अनुभव किया है। इस समय ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला होने वाली है जो ये प्रकट करेगी कि परमेश्वर परिस्थिति के नियंता हैं। सत्य को स्पष्ट असंदिग्ध भाषा में घोषित किया जाएगा। जो लोग सत्य का प्रचार करते हैं वे सुव्यवस्थित जीवन और भक्तिपूर्ण आचरण द्वारा सत्य को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा करते करते वे सत्य की वकालत में शक्तिशाली बनेंगे और उसे उसी निश्चित प्रकार से लागू करने में भी जैसा परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। जब वे लोग जिन्होंने सत्य को जाना और सिखाया है मानवीय समझ की ओर मुड़ जाते हैं और धोखे में पड़े मनों को अपनी मनगढ़ंत कथाओं का भोजन बांटते हैं, तब वो घड़ी आ पहुंची है कि जो लोग कभी सुसमाचार प्रचार के कार्य में कार्यकर्ता रहे थे, परंतु जो रेस्तरां, खाद्य दुकानों और अन्य व्यावसायिक कार्यों के प्रबंधन में खिंच लिए गए हैं, वे फिर से पंक्ति में आएं, अपनी बाइबलों का लगन से अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन को हाथ में लेकर स्वर्गदूतों के सहयोग से बाइबल का सत्य आत्मिक भोजन वितरित करें। ये कार्य अब ईश्वरीय नियुक्ति प्राप्त कार्यकर्ताओं को जोर से बुला रहा है। तब सर्वशक्तिमान कठिनाइयों के पहाड़ों से कहेगा, तू हट जा और समुद्र में जा पड़। पोलसन कलेक्शन 3:3 हट चादर।
एलिया, जॉन और मिलर ऐसे पुरुष थे, और इस प्रकार वे अधिक सामान्य व्यवसायों से बुलाए गए पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जो पुरुष पहले सत्य सिखाते थे अंततः मानवीय समझ की ओर मुड़ जाते हैं और भ्रमित मनों को अपनी ही कल्पित कथाओं का पकवान परोसते हैं। बुलाए गए सामान्य पुरुष बाइबल की भविष्यवाणी का निश्चित अनुप्रयोग वैसा ही देंगे जैसा ईश्वर ने इसे दिया है। उस अंश में सिस्टर व्हाइट ने दो बार पर्वतों को कठिनाइयों के पर्वत के रूप में पहचाना। इन पुरुषों के कार्य में हर पर्वत को समतल करना भी शामिल था। हल चलाने वाली विनम्र परिस्थितियों से बुलाए गए सामान्य पुरुषों द्वारा संपन्न कार्य उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सही बाइबिलीय पद्धति की पहचान की जाती है, उसके विपरीत जो उस समय के धर्मशास्त्रियों द्वारा मानवीय दंतकथाओं के पकवान के रूप में परोसा जाता है।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम, और वे जो अंतिम दिनों में एलिया की आत्मा और शक्ति में जाकर लोगों को उनकी उदासीनता से जागृत करने के लिए निकलते हैं, उनका काम कई मायनों में समान है। उसका कार्य इस युग में किए जाने वाले कार्य का एक प्रतिरूप है। मसीह धर्म के अनुसार
संसार का न्याय करने हेतु दूसरी बार आने वाले हैं। परमेश्वर के वे दूत जो संसार को दी जाने वाली अंतिम चेतावनी का संदेश लेकर चलते हैं, उन्हें मसीह के दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार करना है, जैसे यूहन्ना ने उनके प्रथम आगमन के लिए मार्ग तैयार किया था। इस तैयारी के कार्य में हर घाटी ऊंची की जाएगी और हर पहाड़ नीचा किया जाएगा, टेरा सीधा किया जाएगा और उबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे, क्योंकि इतिहास फिर दोहराया जाएगा और एक बार फिर यहोवा की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी मिलकर उसे देखेंगे, क्योंकि यहोवा के मुख ने ये कहा है। सदर्न वॉचमैन, 21 मार्च 81 नंबर 5।
तीन सुधारकों के वे लक्षण जिनकी पहचान यशाया ने की थी ये हैं कि हर घाटी ऊंची की जाएगी, हर पर्वत नीचा किया जाएगा, टेढ़ा सीधा किया जाएगा और ऊबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे। घाटियों को ऊंचा करके, पर्वतों को नीचा करके, टेढ़े को सीधा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल करके जो प्रभु का मार्ग तैयार किया जाता है वही पुराने पथ है।
वन में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, हमारे परमेश्वर के लिए मरुभूमि में राजमार्ग सीधा करो। हर घाटी ऊंची की जाएगी और हर पर्वत और हर पहाड़ी नीची की जाएगी, टेढ़ा सीधा किया जाएगा और ऊबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब मनुष्य उसे एक साथ देखेंगे, क्योंकि प्रभु के मुख ने ये कहा है। यशाया 40:3-5।
जब नुक्ताचीनी करने वाले यहूदियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा कि क्या वो आने वाले एलिया है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो नहीं है, परंतु फिर उन्होंने अपने को यशाया के उस अंश से जोड़ा।
और ये यूहन्ना की गवाही है। जब यहूदियों ने यरूशलेम से उसके पास पूछने को याजकों और लेवियों को भेजा, तू कौन है, तब उसने स्वीकार किया और इनकार नहीं किया, बल्कि स्वीकार किया, मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो फिर क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं। क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन है, ताकि हम उन्हें उत्तर दें जिन्होंने हमें भेजा है, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, प्रभु का मार्ग सीधा करो, जैसा कि भविष्यद्वक्ता यशाया ने कहा था। यूहन्ना 1:19-23।
प्रभु के मार्ग की तैयारी उस पद्धति की पहचान करती है जिसे समझने और अपनाने के लिए स्वर्गदूतों ने मिलर का मार्गदर्शन किया, ताकि उस मार्ग की बाइबलीय समझ तैयार की जा सके जिस पर मनुष्यों को चलना था। हर पर्वत को नीचा किया जाना था, क्योंकि बाइबलीय भविष्यवाणी के पर्वत ऐसे सत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पहली नज़र में समझने के लिए अत्यधिक कठिन प्रतीत होते हैं। दानियल अध्याय 11:45 के महिमामा पवित्र पर्वत को, जिसे उत्तर का राजा जीतने का प्रयास कर रहा है, समझने के लिए पहले यरूशलेम के वास्तविक महिमामय पवित्र पर्वत की पहचान करनी होती है, जो भविष्य सूचक रूप से आध्यात्मिक महिमामय पवित्र पर्वत को परिभाषित करता है, जिस पर्वत की पहचान आर्मगेडोन के रूप में की गई है, जिसका अर्थ मेगिद्दो का पर्वत है। उसकी व्याख्या करने के लिए व्यक्ति को वास्तविक मेगिद्दो में जाना होता है। जब इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि किसी वस्तु का आरंभ उसकी समाप्ति का चित्रण करता है, तब वे भविष्य सूचक कठिनाइयां, जिन्हें कठिन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, दूर हो जाती हैं। यशाया द्वारा निरूपित, यूहन्ना द्वारा संदर्भित और मिलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति हर घाटी को ऊंचा उठाती है, चाहे वो यशाया अध्याय 22 की दर्शन की घाटी हो, हेजकेल की मरी हुई हड्डियों की घाटी हो, या योएल की पुस्तक की यहोशापात की घाटी। मसीह के चरित्र की सही समझ पर आधारित वही पद्धति जो मिलराइट इतिहास में पालमोनी अद्भुत गणक के रूप में और हमारे इतिहास में अल्फा और ओमेगा अद्भुत भाषाविद के रूप में प्रकट की गई है, परमेश्वर के वचन की घाटियों में दर्शाई गई भविष्यवाणी संबंधी सच्चाइयों को ऊंचा उठाती है। जो टेढ़ी बातें सीधी की जानी है और जो ऊबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाते हैं वे उस कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें उन रीत रिवाजों और परंपराओं का सुधार किया जाता है जिन्हें लाओदिकिया की याजक व्यवस्था अपनी मनगढ़ंत कथाओं के जहरीले पकवानों को बनाए रखने के लिए अपनाती है। एलिया का कार्य विशेष रूप से सही बाइबलीय पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में पहचाना गया है जो धर्मशास्त्रियों और याजकों की दंतकथाओं के विरोध में है। वह कार्य साधारण लोगों द्वारा किया जाता है न कि शिक्षित याजकों और धर्मशास्त्रियों द्वारा। इन तीन गवाहों की भविष्य सूचक विशेषताओं में ये सरल तथ्य भी शामिल है कि आने वाला एलिया एक पुरुष होगा। वो बात भले ही मामूली लगे लेकिन एडवेंटिज्म के धर्मशास्त्री जब अपनी मनगढ़ंत कथाओं को बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो वे सिस्टर व्हाइट का एक ऐसा अंश उठा लेते हैं जहां वो भविष्यकाल में उस व्यक्ति के बारे में बोलती हैं जो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में आएगा और अपनी मनगढ़ंत व्याख्या जोड़कर जोर देकर कहते हैं कि सिस्टर व्हाइट अपने ही बारे में बोल रही थी।
भविष्यवाणी पूरी होगनी ही चाहिए। प्रभु कहते हैं, देखो प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास नबी एलिया को भेजूंगा। कोई व्यक्ति एलिया की आत्मा और शक्ति में आने वाला है। परिशिष्ट देखें और जब वो प्रकट होगा तो लोग कह सकते हैं, तुम बहुत अधिक उत्साही हो, तुम शास्त्रों की उचित रीति से व्याख्या नहीं करते, मैं तुम्हें बताऊं कि अपना संदेश कैसे सिखाना है। बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य और मनुष्य के कार्य में भेद नहीं कर पाते। मैं वही सत्य कहूंगा जो परमेश्वर मुझे देता है और मैं अब कहता हूं, यदि आप लगातार दोष निकालते रहेंगे, विरोध और फूट की भावना बनाए रखेंगे तो आप कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम्हें सत्य और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, पर तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। वे पवित्र और शाश्वत बातों की कद्र करने की स्थिति में नहीं थे, परंतु यीशु ने ये वादा किया कि वो सांत्वनाकर्ता को भेजेगा जो उन्हें सब बातें सिखाएगा और उसने उनसे जो कुछ कहा था वो सब उन्हें स्मरण कराएगा। बंधुओं, हमें मनुष्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मनुष्य से विरत हो जाओ जिसका श्वास उसकी नासिकाओं में है, क्योंकि वो किस बात में गिने जाने योग्य है। आपको अपनी असहाय आत्माओं को यीशु पर टिका देना चाहिए। जब पहाड़ पर स्रोत है तब घाटी के स्रोत से पीना हमें शोभा नहीं देता। निचली धाराओं को छोड़ दें, ऊंचे स्रोतों के पास आएं। यदि सत्य का कोई बिंदु ऐसा है जिसे आप समझते नहीं हैं, जिस पर आप सहमत नहीं हैं, तो जांच पड़ताल करें। शास्त्र की तुलना शास्त्र से करें। परमेश्वर के वचन की खान में सत्य की खोज का कुआं गहराई तक खोदें। आपको अपने आप को और अपने विचारों को परमेश्वर की वेदी पर अर्पित करना चाहिए। अपनी पूर्व धारणाओं को त्याग दें और स्वर्गीय आत्मा को आपको समस्त सत्य में मार्गदर्शन करने दें। प्रचारों के लिए साक्ष्य 45:4-7। कोई इलाइजा की आत्मा और शक्ति में आने वाला है। इन शब्दों को कुछ लोगों ने गलती से ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू किया है जिसके बारे में ये सोचा गया था कि वो श्रीमती व्हाइट के जीवन और कार्य के बाद एक भविष्यवाणी का संदेश लेकर प्रकट होगा। लेट हेवन गाइड शीर्षक वाले इस लेख के 3 अनुच्छेद 29 जनवरी 1890 की सुबह मिशिगन के बैटल क्रीक में एलन व्हाइट द्वारा दिए गए एक भाषण का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। चूंकि ये 18 फरवरी 1890 के रिव्यू एंड हेरल्ड में प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका शीर्षक हाउ टू मीट अ कॉन्ट्रोवर्टेड पॉइंट ऑफ डॉक्ट्रिन था। इस लेख से लिए गए अन्य अंश, जिन्हें इस खंड के कुछ पृष्ठों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है, पृष्ठ 23, 5, 142, 141, 141, 170 हैं और 3, 186 पर पाए जा सकते हैं। ये लेख संपूर्ण रूप में सिलेक्टेड मैसेजेस 1, 5, 107, 146 में पुनर्मुद्रित किया गया है, जिसमें लेट हेवन गाइड शीर्षक वाले उद्धरण का भाग पृष्ठ 573 और 563 पर आता है। जब इस लेख को संपूर्णता में पढ़ा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मिनिपालस कॉन्फ्रेंस के एक वर्ष से कुछ अधिक समय बाद बैटल क्रीक में एक समूह से कही गई इस बात में एलन व्हाइट अपने स्वयं के सेवा कार्य के बारे में बोल रही थी। कुछ लोग उनके कार्य की आलोचना करने लगे थे। ध्यान दें कि इस खंड के पृष्ठ 573 पर जो अनुच्छेद आता है उसके ठीक पहले वाले अनुच्छेद में एलन व्हाइट कहती हैं, हमें इस स्थिति में आना चाहिए जहां हर भेद मिट जाए। यदि मुझे लगता है कि मेरे पास प्रकाश है तो उसे प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। मान लीजिए कि मैं उस संदेश के विषय में जो प्रभु चाहते हैं कि मैं लोगों को दूं, दूसरों से परामर्श करता तो संभव है कि वो द्वार बंद हो जाता ताकि वो प्रकाश उन तक न पहुंच पाता जिनके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, शिष्यों की सारी भीड़ उन सामर्थ्य के कार्यों के कारण जो उन्होंने देखे थे ऊंचे स्वर से आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगी, कहते हुए, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च में महिमा। और भीड़ में से कुछ फरीसियों ने उससे कहा, गुरु, अपने शिष्यों को डांटिए। उसने उत्तर दिया और उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहें तो पत्थर तुरंत चिल्ला उठेंगे। लूका 19:37-40। यहूदियों ने उस संदेश की घोषणा को रोकने की कोशिश की जिसकी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में की गई थी। इसके बाद वो अपने ही अनुभव का फिर से उल्लेख करती है। भविष्यवाणी पूरी होनी ही चाहिए। प्रभु कहता है, देखो, मैं प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजूंगा। मलाकी 4:5। कोई एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में आने वाला है और जब वो प्रकट होगा तो लोग कह सकते हैं, तुम बहुत अधिक गंभीर हो, तुम शास्त्रों की व्याख्या उचित रीति से नहीं करते। चयनित संदेश खंड 1:5-6 कि वो अपने ही अनुभव का उल्लेख कर रही थी। ये बात अगले अनुच्छेद से भी स्पष्ट होती है जिसमें वो कहती है, मैं वही सत्य कहूंगा जो परमेश्वर मुझे देता है। धर्म सेवकों के लिए गवाहियां का परिशिष्ट।
ये तथ्य कि एलएन व्हाइट को अपने समय के धर्मशास्त्रियों और नेताओं की कपोल कल्पनाओं का सामना करना पड़ा, इसका कोई प्रमाण नहीं देता कि वे अपने आप को उस पुरुष के रूप में पहचान रही थीं जो भविष्य में एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में आएगा। एडवेंटिज्म के भीतर एलएन व्हाइट के अनेक विरोधियों का ऐसा कोई प्रमाण कहाँ है जो उनकी अपनाई हुई बाइबिलीय अनुप्रयोग पद्धति पर हमला करता हो? उन्हें कब कभी ये कहा गया, आप शास्त्रों की उचित रीति से व्याख्या नहीं करती? वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि संसार के अंत में लोगों का एक आंदोलन होगा जिसे एलिया की आत्मा और सामर्थ्य से सशक्त किया जाएगा, और ये वैध रूप से किसी भी तरह सुझाया नहीं जा सकता कि उन्होंने ये सोचा था कि तीसरे स्वर्गदूत की प्रबल पुकार का वो आंदोलन उसी समय हो रहा था जब वे भविष्य में एलिया की सामर्थ्य के प्रकट होने के बारे में भविष्यवाणी कर रही थीं। लादोदीकिया के एडवेंटिस्ट धर्मशास्त्री अपनी मंडली को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि सिस्टर व्हाइट प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले भेजे जाने वाले नबी एलिया की पूर्ति के रूप में अपने ही अनुभव का उल्लेख कर रही थी।
देखो, मैं प्रभु के महान और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ता एलिया को भेजूंगा। मलाकी 4:5।
प्रतीक के रूप में एलिया की एक भविष्य सूचक विशेषता ये है कि वो ऐसी बाइबिलीय कार्यविधि प्रस्तुत करता है जो रीतियों और परंपराओं पर आधारित मनगढ़ंत दंतकथाएं बांटने वाले याजक वर्ग की दंतकथाओं का विरोध करती है। उसका मार्ग तैयार करने का कार्य यही मार्ग है, इसी में चलो, उस बाइबिलीय कार्यविधि के द्वारा पूरा होता है जो भ्रष्ट याजक वर्ग की शिक्षाओं का विरोध करती है। और एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और मिलर, इन तीन गवाहों के अनुसार तथा तब भविष्य के एलिया के प्रकट होने के विषय में सिस्टर व्हाइट की गवाही के साथ, वो स्त्री नहीं पुरुष होगा। जब पालमोनी और अल्फा तथा ओमेगा की कार्यविधि को ठीक से समझा जाता है तब उसे केवल धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए बाइबिलीय नियमों का एक समूह मात्र नहीं बल्कि मसीह के चरित्र के प्रतिरूप के रूप में पहचाना जाता है जो उसकी महिमा है।
और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे क्योंकि प्रभु के मुख ने ये कहा है। यशाया 40:5।
मसीह का मूल स्वभाव उनके वचन को समझने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति में प्रतिबिंबित होता है क्योंकि वही वचन है।
स्वर्गीय पवित्र स्थान में परमेश्वर की व्यवस्था वही महान मूल है जिसका त्रुटिहीन प्रतिलिपि पत्थर की पट्टिकाओं पर अंकित और मूसा द्वारा पंच ग्रंथ में लिपिबद्ध व्याज्ञाएं थीं। जो लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु की समझ तक पहुंचे वे इस प्रकार दैवीय व्यवस्था के पवित्र अपरिवर्तनीय स्वरूप को देखने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने, जैसा पहले कभी नहीं, उद्धारकर्ता के वचनों की शक्ति को देखा
जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी किसी प्रकार नहीं टलेगा। मत्ती 5:18 परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी इच्छा का प्रकाशन और उसके चरित्र की प्रतिलिपि होने के कारण सदा तक बनी रहनी चाहिए, स्वर्ग में एक विश्वास योग्य साक्षी के समान। उसकी एक भी आज्ञा रद्द नहीं की गई, न एक मात्रा और न ही एक बिंदु बदला गया है। भजनकार कहता है, हे यहोवा, तेरा वचन सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। उसकी सब आज्ञाएं सत्य हैं, वे सदा सर्वदा स्थिर रहती हैं। भजन संहिता 109:89-11 महान संघर्ष 435।
जिस तरह 10 आज्ञाएं मसीह के चरित्र का अपरिवर्तनीय थरास का प्रतिबिंब है, उसी तरह भविष्यवाणी की व्याख्या के नियम भी उनके चरित्र का प्रतिबिंब है।
हमें स्वयं जानना चाहिए कि ईसाई धर्म के मूल तत्व क्या हैं, सत्य क्या है, वो विश्वास क्या है जो हमने प्राप्त किया है, और बाइबल के नियम क्या हैं, वो नियम जो हमें सर्वोच्च अधिकार से दिए गए हैं। बहुत से लोग बिना किसी ठोस कारण के, जिस पर वे अपने विश्वास की नींव रख सके, और बिना विषय की सत्यता के पर्याप्त प्रमाण के ही विश्वास कर लेते हैं। यदि कोई विचार उनकी अपनी पूर्व धारणाओं से मेल खाता हुआ प्रस्तुत किया जाए, तो वे उसे तुरंत स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। वे कारण से परिणाम तक तर्क नहीं करते, उनके विश्वास की कोई सच्ची नींव नहीं होती, और परीक्षा के समय वे पाएंगे कि उन्होंने रेत पर निर्माण किया है।
जो व्यक्ति पवित्र शास्त्रों के विषय में अपने वर्तमान अपूर्ण ज्ञान से संतुष्ट होकर इसे अपने उद्धार के लिए पर्याप्त समझता है, वो घातक धोखे में पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शास्त्रधारित तर्कों से भली भांति लैस नहीं हैं, ताकि वे त्रुटि को परख सकें और उन सभी परंपराओं और अंधविश्वासों की निंदा कर सकें जिन्हें सत्य के रूप में थोप दिया गया है। शैतान ने परमेश्वर की आराधना में अपने विचार मिला दिए हैं, ताकि वो मसीह के सुसमाचार की सरलता को भ्रष्ट कर सकें। अनेक लोग जो वर्तमान सत्य पर विश्वास करने का दावा करते हैं, नहीं जानते कि वो विश्वास क्या है जो एक बार संतों को सौंपा गया था। मसीह तुम में महिमा की आशा। वे सोचते हैं कि वे पुराने सीमा चिन्हों की रक्षा कर रहे हैं, पर वे गुनगुने और उदासीन हैं। वे ये नहीं जानते कि अपने अनुभव में प्रेम और विश्वास के वास्तविक सद्गुण को कैसे पिरोएं और उसे धारण करें। वे बाइबल के गहन विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि आलसी और लापरवाह हैं। जब शास्त्र के पदों पर मतभेद उठते हैं, तो जिन्होंने उद्देश्यपूर्वक अध्ययन नहीं किया और जो ये निश्चय नहीं कर पाए कि वे क्या मानते हैं, वे सत्य से दूर हो जाते हैं। हमें सबके मन पर यह आवश्यकता अंकित करनी चाहिए कि वे दिव्य सत्य की लगन से खोज करें, ताकि वे जान लें कि वे सचमुच जानते हैं कि सत्य क्या है। कुछ लोग बहुत ज्ञान का दावा करते हैं और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं, जबकि उनके पास कार्य के लिए कोई अधिक उत्साह नहीं, न ही परमेश्वर और उन आत्माओं के प्रति जिनके लिए मसीह मरा कोई अधिक उष्ण प्रेम, मानो उन्होंने कभी परमेश्वर को जाना ही न हो। वे बाइबल को अपनी आत्माओं के लिए उसके रस और पौष्टिकता को अपनाने के लिए नहीं पढ़ते। उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि ये परमेश्वर की वाणी उनसे बोल रही है। परंतु यदि हम उद्धार का मार्ग समझना चाहें, यदि हम धार्मिकता के सूर्य की किरणें देखना चाहें, तो हमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि बाइबल की प्रतिज्ञाएं और भविष्यवाणियां मुक्ति की दिव्य योजना पर महिमा की स्पष्ट किरणें डालती हैं। वे महान सत्य जिन्हें लोग स्पष्ट रूप से नहीं समझते।
सच्चे अर्थों में मसीही होना मसीह के समान होना है। ये अनुच्छेद बताता है कि हमें स्वयं जानना चाहिए कि मसीही धर्म का सार क्या है। ये कहता है कि हमें जानना चाहिए सत्य क्या है। हमें जानना चाहिए वह विश्वास क्या है जो हमने प्राप्त किया है। हमें ये भी जानना चाहिए बाइबल के नियम क्या है, वे नियम जो हमें सर्वोच्च अधिकार से दिए गए हैं। मसीह के समान बनने के लिए ये जानना आवश्यक है कि वे कौन से बाइबल के नियम हैं जो हमें सर्वोच्च अधिकार से दिए गए हैं। उन नियमों के बिना हम मसीह के समान नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वोच्च अधिकार द्वारा दिए गए नियम उसके चरित्र का प्रतिरूप है। एलिया की एक और विशेषता वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने का कार्य है। एलिया उस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जो उस इतिहास के दौरान संपन्न होता है जब पूर्व चुना हुआ समुदाय छोड़ दिया जा रहा होता है, और उसी समय एक नया चुना हुआ समुदाय चुना जा रहा होता है। ये इतिहास एक शुद्धिकरण प्रक्रिया का प्रतीक है जो ऐसे समुदाय को उत्पन्न करती है जिसे शुद्ध अर्पण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पूर्व के अशुद्ध चुने हुए समुदाय के विपरीत।
देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा और वो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा, और जिस प्रभु को तुम ढूंढते हो वो सहसा अपने मंदिर में आएगा, अर्थात वाचा का दूत, जिसमें तुम प्रसन्न होते हो। देखो, वो आएगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, पर उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो प्रकट होगा तो कौन स्थिर रह सकेगा, क्योंकि वो परिशोधक की आग और धोबियों के साबुन के समान होगा, और वो चांदी को परखने और शुद्ध करने वाले की नाई बैठेगा, और वो लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी के समान शुद्ध करेगा, ताकि वे यहोवा को धर्म से भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को भली लगेगी, जैसे प्राचीन दिनों में और जैसे पुराने वर्षों में। मलाकी 3:4।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मसीह के लिए मार्ग तैयार किया ताकि वो अचानक आए और अपने मंदिर को शुद्ध करे। मसीह की सेवकाई के आरंभ और अंत में मंदिर की शुद्धि मलाकी के 3 अध्याय की पूर्ति थी। यूहन्ना वो दूत था जिसने वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार किया ताकि वो लेवी के पुत्रों को शुद्ध करे।
मंदिर की शुद्धि में यीशु ने मसीहा के रूप में अपने मिशन की घोषणा की और अपने कार्य में प्रवेश किया। वो मंदिर जो दैवीय उपस्थिति के निवास के लिए खड़ा किया गया था, इज़राइल और संसार के लिए एक जीवंत पाठ बनने के लिए रचा गया था। अनादिकाल से परमेश्वर का उद्देश्य था कि हर सृजित प्राणी, उज्ज्वल और पवित्र सेराफ से लेकर मनुष्य तक, सृष्टिकर्ता के अंतर्निवास के लिए एक मंदिर हो। पाप के कारण मनुष्यता परमेश्वर का मंदिर न रही। बुराई से अंधकारमय और कलुषित होकर मनुष्य का हृदय अब दिव्य परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं करता था, परंतु परमेश्वर के पुत्र के अवतार द्वारा स्वर्ग का उद्देश्य पूरा होता है। परमेश्वर मनुष्यता में वास करता है और उद्धारकारी अनुग्रह के द्वारा मनुष्य का हृदय फिर से उसका मंदिर बन जाता है। परमेश्वर ने ये ठहराया था कि यरूशलेम का मंदिर हर आत्मा के लिए खुली हुई उच्च नियति का सतत साक्षी हो, परंतु यहूदियों ने उस भवन के महत्व को नहीं समझा जिस पर वे इतना गर्व करते थे। उन्होंने अपने आप को दिव्य आत्मा के लिए पवित्र मंदिरों के रूप में समर्पित नहीं किया। यरूशलेम के मंदिर के आंगन, जो अपवित्र लेनदेन के कोलाहल से भरे थे, हृदय के मंदिर का बहुत ही यथार्थ प्रतिनिधित्व करते थे, जो कामुक वासनाओं और अपवित्र विचारों की उपस्थिति से कलुषित था। संसार के खरीदारों और विक्रेताओं से मंदिर को शुद्ध करते हुए यीशु ने हृदय को पाप की अशुद्धि, सांसारिक इच्छाओं, स्वार्थी वासनाओं और बुरी आदतों से, जो आत्मा को भ्रष्ट करती हैं, से शुद्ध करने के अपने मिशन की घोषणा की। जिस प्रभु को तुम खोजते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, अर्थात वो वाचा का दूत जिससे तुम प्रसन्न होते हो। देखो, वो आएगा, सेनाओं का प्रभु कहता है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो प्रकट होगा तो कौन ठहर सकेगा, क्योंकि वो परखने वाले की आग और धोबी के साबुन के समान है, और वो बैठकर चांदी को परखने और शुद्ध करने वाला होगा, और वो लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी के समान शुद्ध करेगा। मलाकी 3:22।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो दूत था जिसने मसीह के अचानक आने और अपने मंदिर को शुद्ध करने के लिए मार्ग तैयार किया, और विलियम मिलर ने भी मसीह के 22 अक्टूबर 1844 को अचानक परम पवित्र स्थान में आने के लिए वही तैयारी का कार्य पूरा किया।
हमारे महायाजक के रूप में मसीह का पवित्र स्थान की शुद्धि के लिए परम पवित्र स्थान में आना, जिसका उल्लेख दानियल 8:4 में है, मनुष्य के पुत्र का अति प्राचीन के पास आना, जैसा कि दानियल 7:13 में प्रस्तुत किया गया है, और मलाकी द्वारा भविष्यवाणी किया गया प्रभु का अपने मंदिर में आना, ये एक ही घटना के वर्णन हैं। और यही बात मत्थी 25 में मसीह द्वारा वर्णित 10 कुवारियों के दृष्टांत में विवाह के लिए दूल्हे के आने से भी प्रकट होती है। महान संघर्ष 26:3।
जॉन और मिलर मलाकी द्वारा दर्शाए गए इस शुद्धिकरण के प्रतीक थे, जो अब हमारे वर्तमान इतिहास में संपन्न हो रहा है।
भविष्यद्वक्ता कहता है,
मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास महान सामर्थ्य था और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो गई और उसने प्रबल स्वर से पुकार कर कहा, बाबुल महान गिर गया और दुष्ट आत्माओं का निवास बन गया। प्रकाशित वाक्य 18:1-2। ये वही संदेश है जो दूसरे स्वर्गदूत ने दिया था। बाबुल गिर गया है क्योंकि उसने सब जातियों को अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु पिलाई। प्रकाशित वाक्य 14:1। वो दाख मधु क्या है? उसकी झूठी शिक्षाएं। उसने चौथी आज्ञा के विश्राम दिन के स्थान पर संसार को एक झूठा विश्राम दिन दे दिया है और उस असत्य को फिर से दोहराया है जो शैतान ने सबसे पहले अदन में हव्वा से कहा था, आत्मा का स्वाभाविक अमरत्व। इसी प्रकार की अनेक भ्रांतियां उसने दूर दूर तक फैला दी हैं मनुष्यों की आज्ञाओं को शिक्षाओं के रूप में सिखाते हुए। मत्ती 15:9।
जब यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई आरंभ की तो उन्होंने मंदिर को उसके अपमानजनक अपवित्रीकरण से शुद्ध किया। उनकी सेवकाई के अंतिम कार्यों में से एक मंदिर का दूसरा शुद्धिकरण था। इसी प्रकार संसार को चेतावनी देने के अंतिम कार्य कलीसियाओं को दो अलग अलग बुलाहटें दी जाती हैं। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश ये है, बाबुल गिर गया वो महान नगर, क्योंकि उसने अपनी व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु सब जातियों को पिलाई। प्रकाशित वाक्य 14:8। और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की जोरदार पुकार में स्वर्ग से ये आवाज़ सुनाई देती है, हे मेरे लोगों, उससे निकल आओ ताकि तुम उसके पापों में सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में न पड़ो, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्मताओं को स्मरण किया है। प्रकाशित वाक्य 18:5। चयनित संदेश पुस्तक 2:118।
मसीह की सेवकाई के दो मंदिर शुद्धिकरण और मिलरवादी इतिहास के दो मंदिर शुद्धिकरण मलाकी अध्याय 3 की पूर्तियां थीं और वे 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुए उन दो मंदिर शुद्धिकरणों की ओर भी संकेत करती हैं जब न्यूयॉर्क सिटी की विशाल इमारतें परमेश्वर के स्पर्श मात्र से ढहा दी गई और प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का पराक्रमी स्वर्गदूत उतरकर अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित कर दिया। अन्य बातों के साथ ये एडवेंटवाद के लाओदिकियाई धर्मशास्त्रियों द्वारा परोसी गई दंत कथाओं को भी असत्य सिद्ध करता है जो ये दावा करते हैं कि एलन व्हाइट वही भविष्यद्वक्ता एलिया थीं जो प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले आने वाला था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का स्वर्गदूत जब उतरता है तब होने वाला मंदिर शुद्धिकरण एलन व्हाइट के देहांत के 86 वर्ष बाद शुरू हुआ।
John the Baptist or उसके शिष्य Miller or Millerites to the future for America undudo kapredinitif kurtehen jo marb tayar kurtehen teki wacha kadut achanik apni mandir me ai or mandir ki dherm nindatmak apavithrata se usa shud kare.
एलिया एक प्रतीक के रूप में एक मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। वो ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामान्य जीवन के मार्ग से बुलाया गया है, न कि कोई पुरोहितीय धर्मशास्त्री। उसकी सेवकाई सही बाइबिलीय पद्धति प्रस्तुत करती है जो सर्वोच्च अधिकार द्वारा दिए गए नियम हैं। उसकी सेवकाई वर्तमान लाओदिकिया के पुरोहित वर्ग की किंवदंतियों, रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित पद्धति से टकराव में है। वो एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए मार्ग तैयार करता है जो पीछे छोड़ दिए गए चुने हुए लोगों के अवशेषों में से एक नए चुने हुए समुदाय को उठाती है। ये शुद्धिकरण प्रक्रिया इस संदर्भ में रखी गई है कि ये अचानक घटित होगी। एलिया भी एक ऐसी सेवकाई और कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे परमेश्वर विशेष रूप से स्थापित करता है और उसे केवल परमेश्वर की सेवकाई के रूप में पहचानता है। हम इसे अगले लेख में मिलराइट्स के इतिहास के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे।
और ऐसा हुआ कि सायकालीन भेंट चढ़ाने के समय भविष्यद्वक्ता एलिया पास आकर बोला, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के प्रभु परमेश्वर, आज के दिन ये प्रकट हो कि तू इज़राइल में परमेश्वर है और कि मैं तेरा दास हूँ और कि मैंने ये सब बातें तेरे वचन के अनुसार की हैं। काही राजा 18:37।